आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
भारत में 25 की उम्र पार करते ही एक बहुत ही आम सी चीज देखने को मिलती है। मतलब आपने भी ध्यान दिया होगा, घर के डाइनिंग टेबल पर बातों का रुख अचानक से बदलने लगता है।
बिल्कुल, एकदम से सबकी नजरें आप पर आ जाती हैं।
हाँ, और 27 तक आते आते तो यार हर वीकेंड पर कोई ना कोई रिश्ता या किसी का बायोडाटा व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होने लगता है।
और फैमिली ग्रुप्स तो बस इसी काम के लिए रह जाते हैं ना।
एग्जैक्टली। और जैसे ही उम्र 30 के करीब पहुंचती है तो किसी भी पारिवारिक समारोह या शादी में जाना किसी बहुत ही सख्त इंटरव्यू पैनल का सामना करने जैसा हो जाता है।
अब आगे का क्या सोचा है, ये सवाल तो जैसे राष्ट्रीय चिंता बन जाता है।
सही बात है, लेकिन देखो इस बढ़ते दबाव के बावजूद भारत की पूरी पीढ़ी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे बहुत ही शांति से लेकिन एकदम दृढ़ता के साथ कह रहे हैं, अभी नहीं।
और ये जो अभी नहीं है ना, इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य स्रोत है इंडियाज डिलेड मैरिज शिफ्ट चॉइस ओवर कैलेंडर, वो इसी विषय की परतों को खोलता है।
तो ये सिर्फ शादी की उम्र 2-4 साल आगे खिसकने की बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये असल में दो पीढ़ियों के बीच बदलती हुई सोच समाज के पूरे ढांचे में आ रहे एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मिशन ही ये समझना है कि ये अभी नहीं कोई बगावत या विद्रोह नहीं है।
अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया कोई रिबेलियन नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जो डेटा हमारे सामने है वो बता रहा है कि भारत का सामाजिक ताना बाना एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है।
तो अगर हम डेटा की ही बात करें, 2011 के सेंसस और हालिया सर्वे के आंकड़ों को जब मैंने देखा तो एक बहुत ही स्पष्ट ट्रेंड नजर आया।
हाँ, जो नंबर्स है वो काफी चौंकाने वाले हैं।
बिल्कुल, टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में शादी की जो औसत उम्र पहले 23 या 24 साल हुआ करती थी वो अब खिसक कर 28, 29 या कई मामलों में तो 30 के पार पहुंच गई है।
और ये सिर्फ एक या दो साल की देरी नहीं है।
हाँ, मतलब पूरी टाइमलाइन ही बदल गई है। इस बदलाव को समझने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया दिया गया है। पिछली पीढ़ी के लिए शादी एक कैलेंडर माइलस्टोन की तरह थी।
कैलेंडर माइलस्टोन मतलब
जैसे स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज जाना तय होता है ना, फिर कॉलेज के बाद नौकरी लगना तय होता है, वैसे ही एक तय उम्र आने पर शादी होना बस एक स्वाभाविक अगला कदम था। कैलेंडर में तारीख आई और काम हो गया।
हाँ बिल्कुल, एक चेकबॉक्स की तरह।
एग्जैक्टली। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए ये कैलेंडर वाली बात पूरी तरह खत्म हो गई है।
सही कहा, इस कैलेंडर वाले मॉडल के टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब शादी एक चेकबॉक्स नहीं बल्कि एक चॉइस बन गई है। और इस चुनाव को लेकर युवाओं का नजरिया बहुत स्पष्ट है। अक्सर पिछली पीढ़ी या समाज के बुजुर्ग युवाओं के इस अभी नहीं वाले रवैये को
उनका अहंकार मान लेते हैं, है ना, कि बच्चे जिद्दी हो गए हैं।
बिल्कुल, उन्हें लगता है कि आज की पीढ़ी स्वार्थी हो गए है या जिम्मेदारी से भाग रही है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये अहंकार नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूकता है।
अच्छा।
आज का युवा ये समझता है कि शादी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर जिंदगी सेट हो जाती है, बल्कि ये एक बहुत लंबे और जटिल सफर की शुरुआत है। और वे इस सफर पर तब तक नहीं निकलना चाहते जब तक वे मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार न हों।
ये बात सैद्धांतिक रूप से सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर आएं, तो क्या ये बदलाव सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आज की युवा ज्यादा आजाद ख्यालों के हैं?
देखिए, सिर्फ ख्यालों से इतना बड़ा बदलाव नहीं आता।
वही ना, क्या इसके पीछे कुछ बहुत ही कठोर आर्थिक सच्चाइयां भी काम कर रही हैं? क्योंकि जब लाखों लोग एक साथ अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले को टालने लगते हैं तो उसके पीछे अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हाथ होता है।
बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, आर्थिक यथार्थ इस पूरे बदलाव की नींव है। आज के एक युवा प्रोफेशनल की सबसे पहली प्राथमिकता अपनी खुद की आर्थिक स्थिरता है। अगर हम 90 के दशक या उससे पहले के समय से तुलना करें तो उस वक्त जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बफर होता था।
हाँ, मतलब शादी का खर्च, घर का खर्च, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश का खर्च भी पूरे परिवार में बढ़ जाता था।
एग्जैक्टली। लेकिन आज एक युवा को ये सारा बोझ अकेले ही अपने पार्टनर के साथ मिलकर उठाना है। वो रेंट दे रहा है, एजुकेशन लोन चुका रहा है
और गाड़ी की ईएमआई भी तो है।
बिल्कुल, उसे अपने करियर में ग्रो करना है और एक इमरजेंसी फंड भी बनाना है।
और भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तेजी से बढ़ी है यार, वो भी डराने वाली है। हमारी स्रोत सामग्री भी इस बात पे जोर देती है कि आज एक सामान्य मिडिल क्लास शादी का खर्च ही कई लाखों में आता है।
सिर्फ शादी का ही नहीं, उसके बाद के खर्चे भी तो देखिए।
हाँ, रियल इस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं, मेडिकल खर्च बढ़ गए हैं, और भविष्य में बच्चों की शिक्षा का खर्च एक ऐसा पहाड़ है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं।
सही बात है।
मतलब ये एक इतना बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इसके लिए पहले से तैयार होना चाहेगा। बिना किसी ठोस आर्थिक आधार के एक नए परिवार की शुरुआत करना आज के समय में समझदारी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा लगती है।
और आर्थिक स्थिरता की इस जद्दोजहद के साथ साथ आइडेंटिटी यानी अपनी खुद की पहचान को लेकर जो बदलाव आया है वो इससे भी बड़ा फैक्टर है।
आइडेंटिटी मतलब करियर के संदर्भ में?
हाँ, पिछली पीढ़ियों में करियर बनाना और शादी करना अक्सर साथ साथ चलते थे, खासकर पुरुषों के लिए। लेकिन महिलाओं की भूमिका में जो ऐतिहासिक बदलाव आया है उसने इस पूरी टाइमलाइन को पलट कर रख दिया है।
बिल्कुल।
आज लड़कियां सिर्फ किसी की बेटी, फिर किसी की बहू और पत्नी बनकर नहीं रह जाना चाहती। वे इस पूरी प्रक्रिया में जाने से पहले अपनी खुद की एक स्पष्ट पहचान बनाना चाहती हैं, अपना करियर सेट करना चाहती हैं।
वे एक समान दर्जे के साथ रिश्ते में प्रवेश करना चाहती हैं, है ना? ना कि आर्थिक या सामाजिक रूप से किसी पर निर्भर होकर।
बिल्कुल सही।
और पता है, जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये सोच सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे बड़े महानगरों तक सीमित नहीं है।
हाँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ बड़े शहरों की बात है।
स्रोत इस बात को बहुत प्रमुखता से सामने रखता है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट के कारण ये विचार छोटे शहरों, मतलब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत के छोटे शहरों की लड़कियां भी अब अपनी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को शादी से ऊपर रख रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है।
और जहाँ इंटरनेट की बात आती है, वहाँ सोशल मीडिया की भूमिका पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है।
हाँ, अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि सोशल मीडिया ने युवाओं के दिमाग में परफेक्शन की ऐसी उम्मीदें भर दी हैं जो हकीकत में कभी पूरी नहीं हो सकती।
बिल्कुल। इंस्टाग्राम की रील्स देखकर हर किसी को एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट वेकेशन और एक परफेक्ट प्रपोजल चाहिए।
तो क्या इस वजह से लोग बहुत ज्यादा चूजी या अवास्तविक हो गए?
देखिए, स्रोत सामग्री इस धारणा को चुनौती देती है। सोशल मीडिया का असर सिर्फ अवास्तविक उम्मीदें जगाना नहीं है।
अच्छा, तो और क्या है?
सोशल मीडिया के इस असर को एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस की तरह देखना चाहिए। इसने एक बहुत बड़ी जागरूकता दी है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप असल में क्या होती है।
मतलब आज के युवा भारतीय अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन, रेड फ्लैग्स और शेयर्ड वैल्यूज जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं।
Exactly. वे समझते हैं कि रिश्ता सिर्फ समाज को दिखाने के लिए या खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए नहीं है।
हाँ, बल्कि ये दो लोगों के बीच का मानसिक और भावनात्मक तालमेल है।
और इसी मानसिक और भावनात्मक तालमेल की खोज ने अरेंज मैरिज के पारंपरिक तरीके को कटघड़े में खड़ा कर दिया है।
बिल्कुल। अगर हम अरेंज मैरिज के पुराने फॉर्मेट को देखें तो दो परिवार मिलते हैं, लड़का लड़की एक या दो बार कॉफी पीने जाते हैं
और बस उनसे उम्मीद की जाती है कि वे तय कर लें कि उन्हें अगले 50 साल एक साथ बिताने हैं या नहीं।
हाँ यार, आज के युवाओं के लिए प्रक्रिया बहुत ही अतार्किक और डरावनी है। उनका सीधा सा सवाल होता है कि महज कुछ घंटों की मुलाकात में, जहाँ दोनों पक्ष अपना सबसे अच्छा रूप दिखा रहे हैं, हम जिंदगी भर का फैसला कैसे ले सकते हैं।
सही बात है, वे किसी भी कीमत पर जल्दबाजी नहीं करना चाहते।
और पता है, इस जल्दबाजी से बचने के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है।
जब मैं श्रुत सामग्री पढ़ रही थी तो मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो पिछली पीढ़ी के ट्रॉमा से जुड़ी थी।
जेनरेशनल ट्रॉमा।
ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है।
हाँ, बहुत से युवा भारतीयों ने अपनी ही आंखों के सामने अपने ही घरों में बहुत सी अनहैप्पी मैरिजेस देखी हैं।
बिल्कुल।
उन्होंने अपने माता पिता को एक ही छत के नीचे 25-30 सालों तक साथ रहते हुए देखा है, लेकिन साथ ही उन्हें भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला भी देखा है।
और अपने ही माता पिता को एक ऐसे रिश्ते में घुटते में देखना जहाँ प्यार या संवाद बहुत पहले खत्म हो चुका है, लेकिन समाज क्या कहेगा या बच्चों का क्या होगा, इस डर से वे साथ रहने को मजबूर है। इस अनुभव ने युवाओं के अंदर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने उस खामोश समझौते को बहुत करीब से महसूस किया है।
और इसी ट्रॉमा ने उन्हें ये तय करने पर मजबूर किया है कि उन्हें अपने लिए ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मतलब उनका मंत्र बन गया है, अगर शादी करेंगे तो सही इंसान से करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
कम से कम दबाव में आकर जल्दी तो बिल्कुल नहीं करेंगे।
एग्जैक्टली। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन है जो ये पीढ़ी अपने परिवारों के इतिहास को देखकर कर रही है।
लेकिन जरा सोचिए, जब एक पूरा का पूरा डेमोग्राफिक ग्रुप, लाखों करोड़ों युवा एक साथ अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले को टालने लगते हैं, तो इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता।
मैक्रो लेवल पर भी तो बहुत कुछ बदल रहा होगा।
बिल्कुल, अर्थव्यवस्था और समाज की पूरी संरचना पर इसका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक स्तर पर इसका असर बहुत विशाल है।
जैसे कि
सबसे पहला असर तो भारत के सदियों पुराने जॉइंट फैमिली सिस्टम पर पड़ रहा है, जो अब धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। और दूसरा और सबसे गंभीर असर जन दर यानी बर्थ रेट पर पड़ रहा है।
अच्छा, क्योंकि शादी की उम्र खिसक रही है।
हाँ।
जब शादी की उम्र 24 से खिसक कर 30 के पार जाती है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे पैदा करने की दर और परिवारों का आकार छोटा होने लगता है।
और इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में भारत का पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल जाएगा।
एग्जैक्टली। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड या युवा आबादी के बल पर हम आज अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का दावा करते हैं, वो आबादी तेजी से बूढ़ी होने लगेगी और नई जनरेशन उस अनुपात में नहीं होगी।
ये तो हुई समाज और देश के भविष्य की बात। लेकिन अगर हम वापस व्यक्ति के स्तर पर लौटें, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है, जिसे हम द पैराडॉक्स ऑफ द इंडिविजुअल कह सकते हैं।
ये विरोधाभास क्या है?
स्रोत बताता है कि जो लोग शादी में देरी कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सचमुच बहुत खुश हैं। वे दुनिया घूम रहे हैं, नई स्किल्स सीख रहे हैं, अलग अलग करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब उनके पास एक ऐसी आज़ादी और मोबिलिटी है जो शायद पिछली पीढ़ियों के पास कभी नहीं थी।
बिल्कुल। लेकिन इस आज़ादी के साथ एक बहुत गहरा अंधेरा भी जुड़ा हुआ है, और वो है अकेलापन।
अकेलापन आज के समय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक विडंबना है।
हाँ।
युवा एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए हैं, जिसे मनोविज्ञान में लिमिनल स्पेस कहा जाता है, यानी एक ऐसी बीच की जगह जहां आप ना तो इस पार होते हैं और ना उस पार।
मतलब ना तो पूरी तरह सिंगल और ना ही कमिटेड।
एग्जैक्टली। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये कुछ ऐसा है। एक तरफ डेटिंग ऐप्स है जो ये इल्यूजन देते हैं कि ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन वहां गहरा कनेक्शन नहीं मिलता।
हाँ, और दूसरी तरफ मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जो किसी बिजनेस डील जैसी लगती हैं।
बिल्कुल सही। तो एक इंसान जो इस लिमिनल स्पेस में है, उसे इंसानी फितरत के नाते एक कनेक्शन की, किसी अपने की बहुत जरूरत महसूस होती है।
वीकेंड्स पर या किसी मुश्किल दिन के बाद उसे एक साथी चाहिए होता है।
लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है, उसे अपनी आजादी खोने का डर सताने लगता है। गलत इंसान के साथ फंस जाने का डर उस पर हावी हो जाता है।
और नतीजा ये होता है कि वे ना तो पूरी तरह से अकेले रहने में सहज हो पाते हैं और ना ही किसी सीरियस रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हो पाते हैं। वे बस इसी बीच की जगह में लटके रहते हैं।
और इसी अकेलेपन और उलझन के बीच परिवार का दबाव आग में घी का काम करता है।
उफ, वो तो है।
घरों में माता पिता और युवाओं के बीच तनाव पनप रहा है, वो बहुत वास्तविक है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इस तनाव के पीछे कोई द्वेष नहीं है।
हाँ, दोनों तरफ प्यार है। माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते और बच्चे भी अपने माता पिता का सम्मान करते हैं।
बिल्कुल। समस्या इंटेंशन की नहीं है, बल्कि ट्रांसलेशन की है।
ट्रांसलेशन की समस्या?
हाँ, ये पीढ़ियों के बीच अनुवाद की समस्या है, जहाँ दोनों एक ही चीज को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं।
इस अनुवाद की समस्या को समझना बहुत जरूरी है। माता पिता की पीढ़ी के लिए शादी का मतलब हमेशा से सुरक्षा रहा है, भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की सुरक्षा।
सही बात है।
जब वे अपने बच्चे को 30 या 32 साल की उम्र में अविवाहित देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनका बच्चा असुरक्षित है। उन्हें डर लगता है कि उनके बाद बच्चे का क्या होगा।
और दूसरी ओर युवा पीढ़ी के लिए शादी सुरक्षा नहीं बल्कि एक चॉइस है।
एग्जैक्टली। एक ऐसा चुनाव जो तभी होना चाहिए जब उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से सब कुछ सही लगे। मतलब एक पीढ़ी के लिए जो चीज जिंदगी में सेटल होना है, दूसरी पीढ़ी के लिए वही चीज बिना प्यार किया गया एक भयानक समझौता लग सकती है।
और इस पूरी चर्चा का सार ये नहीं है कि आज की पीढ़ी शादी नाम की संस्था से नफरत करने लगी है।
हाँ, स्रोत सामग्री भी इस बात की पुष्टि करती है कि ज्यादातर युवा शादी करना चाहते हैं।
बिल्कुल। वे शादी के खिलाफ नहीं है, वे बस एक बुरी शादी के खिलाफ है। वे एक अच्छी शादी चाहते हैं। और उनकी मांगें कोई बहुत अवास्तविक नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि उनका जो भी पार्टनर हो वो उनकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करे, रिश्ते में घुटन ना हो बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए स्पेस मिले।
और ये फैसला किसी कैलेंडर या समाज क्या कहेगा कि दबाव में आकर न लिया जाए, बल्कि एक वास्तविक गहरे कनेक्शन के आधार पर लिया जाए।
तो अगर हम समाधान की दिशा में सोचें तो सबसे जरूरी कदम यही है कि दोनों पीढ़ियों को अपने अपने अहम को किनारे रखकर एक दूसरे की भाषा समझनी होगी।
माता पिता को ये समझना होगा कि जब उनका बच्चा अभी नहीं कह रहा है तो उसका मतलब कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बस अपना समय ले रहा है।
वहीं दूसरी ओर युवाओं को भी ये समझना होगा कि घर वालों का जो दबाव है, जो बार बार शादी के लिए टोकना है, वो किसी दुश्मनी या कंट्रोल करने की चाहत से नहीं आता।
हाँ, वो उनके भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरे डर और चिंता से आता है।
इसलिए घरों में बातचीत होना खुलकर और बिना किसी जजमेंट के संवाद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये संवाद नहीं होगा तब तक ये तनाव ऐसा ही बना रहेगा।
संवाद से ही रास्ते निकलेंगे, बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने डेटा से लेकर अर्थव्यवस्था तक और पिछली पीढ़ी के ट्रॉमा से लेकर आज के युवाओं के अकेलेपन तक हर पहलू को छुआ। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस स्रोत सामग्री की परिधि से भी थोड़ा आगे जाता है और हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
अच्छा, वो क्या है?
देखो, अगर हम इस पूरे ट्रेंड को ध्यान से देखें, जहां आज की पीढ़ी शादी को सामाजिक ढांचे, पारिवारिक दबाव और कैलेंडर से पूरी तरह निकालकर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत चॉइस, कंपैटिबिलिटी और भावनात्मक जुड़ाव तक सीमित कर रही है, तो क्या आने वाले कुछ दशकों में हमें शादी जैसी किसी औपचारिक संस्था की जरूरत ही रह जाएगी?
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है,
है ना? क्या ये संभव है कि भविष्य में लोग कानूनी शादी, मैरिज सर्टिफिकेट या सामाजिक मान्यता के बजाय सिर्फ गहरे भावनात्मक कमिटमेंट के कुछ बिल्कुल नए तरीके ईजाद कर लें?
मतलब बिना किसी लीगल या सोशल ठप्पे के।
एग्जैक्टली। एक ऐसा समाज जहां साथ रहने और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए किसी सरकारी मोहर, कानूनी दस्तावेज या समाज की इजाजत की दरकार ही ना हो, जहां सिर्फ दो लोगों का आपसी विश्वास ही उनके रिश्ते की इकलौती और सबसे बड़ी मान्यता हो।
वाओ,
ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सामाजिक भविष्य की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करता है और जिस पर विचार करना सुनने वालों के लिए बेहद दिलचस्प होगा।
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।